हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 11 ग्यारहवें श्लोक की पहली लाइन हम लोगों ने कल पढ़ी, मई चानन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी। अब यहाँ तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, इस ज्ञान, ये जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि ज्ञान क्यों दे रहे भगवान। देखो, वास्तव में ज्ञान हासिल करने का मकसद क्या है, कि आप समस्त कष्टों से दूर हो। और समस्त कष्टों से दूर इंसान कब हो सकता है, वो श्री प्रभुपाद ने इस जो ये श्लोक है ना, इसके तात्पर्य के स्टार्ट में बताया है। उर्दू भगवत गीता 472 पेज नंबर 472 लाइन नंबर 4 और हिंदी भगवत गीता 423 423 और लाइन नंबर 5 श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। यानी कि जो हम इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा कैद हो गई है ना, इतने जन्मों से कैद है और हमें अलग अलग प्रकार के दुख यातनाएं सहने पड़ते हैं और भगवान से बहुत दूर हो गए हैं। इसलिए अब जब तक हम ये ज्ञान हासिल करके, जो अब तक जो ज्ञान हासिल किया ना, और उसके आगे भी जो भगवान बता रहे हैं, वो हासिल करने का मकसद क्या है, कि हम अपनी आत्मा को इस शरीर के पास से बाहर निकालें। आगे श्री बाबा जी कहते हैं, देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। कुछ लोग बोलेंगे ना कि क्यों हम ये सब इतनी सारी क्वालिटीज अपने अंदर क्यों डालें, इतना मुश्किल काम हमसे नहीं होगा। वो नहीं होगा तो फिर अब आपकी मुक्ति भी नहीं होगी। यदि आप चाहते हो कि हम अपने इस आत्मा को इस देह के चुंगल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम और आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक कष्टों से अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्ञान हासिल करना अनिवार्य है। और श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इससे बाहर निकलने का साधन है। इन ज्ञान की परिक्रय आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, जो हमने कल पढ़ी है। उसमें क्या कह रहे हैं, आप देखो हाँ, बुक में लाइन नंबर 6 है उर्दू में, उसमें क्या कहा कि ज्ञान की परिक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से, यानी कि जो अब तक भगवान श्री कृष्ण ने पूरा जो ज्ञान बताया ना, उनमें से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो कल हमने पढ़ी थी ना 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति, कौन सी, मई चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, ये वाली जो लाइन थी कि भगवान ने कहा था इन ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भक्ति, भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। यानी कि वास्तव में ज्ञान जो है वो यही है, ज्ञान की पराकाष्ठा यही है कि आप भगवान की अनन्य भक्ति को स्वीकार करो। क्योंकि जब तक वहां वो स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे, फिर चाहे कितना ही रूखा सूखा ज्ञान प्राप्त क्यों ना हो जाए, सारे श्लोक याद हो जाए, सारे शास्त्र याद हो जाए, यदि कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो ये है श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया। तो आज हम लोग 11वें अध्याय की दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। उर्दू भगवत गीता में पेज नंबर 475 की सेकंड लास्ट लाइन, जो लास्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना कुदरती तौर पर, वहां से शुरू करेंगे। और हिंदी भगवत गीता में 427 पेज नंबर है और सेकंड पैराग्राफ है उसके। अब जो दूसरा श्लोक है उसको देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरी लाइन 11वें अध्याय की, भगवान कह रहे हैं, विविक्तदेश सेवित्वं अरतिर जनसंसिधि। विविक्त, विविक्त का मतलब होता है एकांत, अकेली जगह पर। देश मतलब स्थान की, सेवित्वं का मतलब होता है आकांक्षा रखते हैं। अरति, देखो रति का क्या मतलब होता है, किसी के अंदर आसक्ति हो, और अरति का मतलब होता है अनासक्त भाव से जनसंसिधि। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञानी होता है वो क्या करता है, वो ऐसी जगह पर रहने रहना चाहता है, एकांत स्थान में रहने की इच्छा करता है, ऐसी जगह जहाँ पर है ना रश नहीं हो, पब्लिक नहीं चाहिए उसको, पब्लिक के साथ बैठेंगे और गप्पे लड़ाना वो इस ज्ञानी का स्वभाव ही नहीं होता है। जिन जन समूहों से विलग, यानी कि यहाँ पर बताओ ना अरतिर जन संसिधि, जन संसिधि यानी ज्यादा लोग जहाँ पर बैठे हुए हों, किटी पार्टीज हो रही हो या फिर है ना गेट टुगेदर पार्टीज हो रही हो, तो जो ज्ञानी होगा ना वो बोलेगा ये तो मेरा टाइम वेस्ट होगा खाम खा। और ऐसा पता है श्रील रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में भी बताते हैं कि यदि आप भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो आपको छह चीजों से बचना पड़ेगा। उपदेश अमृत श्लोक नंबर 2 श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अत्याहार प्रयाशश्च प्रजल्प नियमांग्रह जनसंगश्च लाल्यं च चक्षि भक्ति विनश्यति। कि ये छह चीजें जो है ना आपकी भक्ति का सर्वनाश कर देती हैं। क्या? अत्याहार, जरूरत से ज्यादा खाना या धन जमा करने की इच्छा रखना, प्रयास मादी चीजों को हासिल करने की अटूट मेहनत करना, यानी कि जो आपको आपके भाग्य में होगा ना वो आपको कम मेहनत से मिल जाएगा, लेकिन ये भी प्राप्त करो वो भी प्राप्त करो इसी में जीवन बिताना। अत्याहार प्रयास है जो प्रजल्प, ये प्रजल्प है ना ऐसा अपराध है जो हम सब करते हैं। वो क्या है? प्रजल्प का मतलब होता है ऐसे मौजूद पर बात करना, ऐसे टॉपिक्स पर बात करना जिनमें कोई स्वर स्वाद नहीं होता, जैसे हम लोग फोन करते हैं या चैटिंग करते हैं, मतलब कुछ उसका रिजल्ट नहीं होता, हाँ भाई क्या चल रहा है ये वो, इस तरह के प्रजल्प होते हैं ना, ऐसे टॉपिक्स पर बात करना जो कि कृष्ण भावना भावित टॉपिक्स नहीं होते हैं। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त बाकी दुनियावी मौजूद पर टॉपिक पर इतना बात करना, उसे ये करना चाहिए, उसने ये किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रोग्राम में ये हुआ, उसने ये पहना था, ये सब फिजूल बातें। नियमाग्रह मतलब शास्त्रों के नियमों को बहुत तीव्रता से पालन करना, लेकिन कृष्ण की भक्ति उसके अंदर सम्मिलित ना हो, बस ऐसे ही नियमों को पालन करते रहना, खाली कि मुझे पालन कर। नियमाग्रह जनसंगस्य, यहाँ पर भी देखो वही वर्ड आया, यहाँ पर भी भगवान ने कहा ना जन संसिधि, तो जनसंगस मतलब ऐसे आम लोगों की संगति करना जो कृष्ण भावना भावित नहीं, जो कैसी में नहीं है ना, उनके साथ टाइम आप जब व्यतीत करते हो, जब ऐसे लोग के साथ टाइम स्पेंड करते हो जो भगवान के भक्त नहीं है, तो आपका टाइम 100% वेस्ट हो रहा है। भक्तों की संगति करनी चाहिए, इससे हमारी भक्ति में उन्नति होती है। क्या बताया? अत्याहार प्रयास प्रजल पुण्यमांगरा जनसंगस्य लौल्यम च, और ये छठे नंबर पे है लौल्यम। लौल्यम का मतलब होता है क्या? लौल, लालच, लालच करना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए। तो ये छह चीजें ऐसी हैं जो कि आपको भक्ति के पथ से गिरा देती हैं, आपकी भक्ति का सर्वनाश करती हैं। तो जो चाहते हैं कि भक्ति में उन्नति करें तो उन्हें इन छह चीजों से बचना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, विवेक तदेश सेवित्वं अरतिर जन संसिधि, यानी कि भक्त को क्या करना चाहिए, जो ज्ञानी है उसको क्या करना चाहिए, एकांत स्थान में रहने की इच्छा रखनी चाहिए, जन समूह से विलग रहने की इच्छा करनी चाहिए। और आगे बताया, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं, आध्यात्म ज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर सब भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, और अंश का कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना, और मैं कृष्ण दास हूँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण है ना, नित्य दास, में भगवान का नित्य दास हूँ। तो यह है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, वो उसकी महत्ता को स्वीकार करता है, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और तथा परम सत्य तत्व ज्ञान, तत्व का क्या मतलब होता है, जो रियलिटी है, परम सत्य की दार्शनिक खोज, उसको खोजने की कोशिश करता है, वास्तविक में रियलिटी है क्या, जो भगवान है जिसने ये सब कुछ बनाया है उसकी क्या रियलिटी है उसके बारे में। और आखिरी लाइन में बहुत भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम, एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम, एतज् मतलब एतज् जो भी मैंने अभी तक बताया ना आपको, क्या क्या बताया अब आप ऐसे देखते हैं एक दफा, प्लीज आप लोग बोर नहीं होना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं रिवाइज करना चाह रही हूँ वापस एक बार। क्या क्या सीखा? अमानित्वम् अदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यात्मा विनग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्ति अनभिश्वंघ पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च नन्ययोगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वं अरतिर् जनसंसिधि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यद तोऽन्यथा। इसके अतिरिक्त जो भी है यद तोऽन्यथा, अन्यथा जो भी है, ये जो बताया वो तो ज्ञान है, और अन्यथा जो कुछ भी है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। तो भगवान ने कहा नम्रता विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रमाण गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रियों तृप्ति के विषयों का परित्याग करना अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति अभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। यहाँ तक पढ़ लिया। आगे एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलग और अलग रहना आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञानता ही है। अब हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद जी क्या क्या हमें समझा रहे हैं इस श्लोक के बारे में। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। उर्दू पढ़ने वाले 475 लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है और हिंदी वालों देखिए 427 सेकंड पैरा है उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो आज हमें भगवान बताना चाह रहे हैं विविक्त सेवे यानी कि आपको एकांत आम लोगों के से दूर रहकर एकांत स्थान में रहने की इच्छा करनी चाहिए जो ज्ञानी होता है उसको। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहता यानी कि नेचुरली उसका स्वभाव हो जाता है। अब आप भक्त बन जाओगे आपको आम लोग जो फिजूल टॉपिक से बात करते हैं उनके साथ बैठने का दिल करेगा नहीं करेगा ना। तो भगवान भी कह रहे हैं कि दूर ही रहो उनसे नहीं आपको दिल भी नहीं कर रहा है और आपको बैठना भी नहीं। क्यों नहीं बैठना क्योंकि संग तारे संग बोरे अगर अच्छे लोगों का संग करेंगे भक्तों का संग करेंगे ना तो हमें भक्ति में उन्नति होगी और अगर भौतिकवादी लोगों का संग करेंगे तो फिर क्या होगा हो सकता है क्योंकि बैड थिंग जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है हमें तो फिर हो सकता है उनके गुण जो है हम लोग तो उनको अपनी संगति करवा सके या ना करवा सके उल्टा हमें ही वो। तो जब तक भक्त इतना ज्यादा दृढ़ नहीं हो जाता है कि वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके तब तक उसे अपने आप को संभाल के रखना चाहिए ऐसे लोगों का संगत नहीं करना चाहिए जिनसे पॉसिबल हो कि वो अपने भक्ति पथ से नीचे गिरे और उसकी साधना को क्षति पहुंचे। आगे श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इससे उसे हानि पहुंच सकती है। यही मैं बता रही हूँ ना कि अगर हम लोग ऐसे लोग का संग करेंगे जो भौतिकतावादी हैं तो हम तो देखो इतने ज्ञानी हैं नहीं इतने दृढ़ हमारे पास संकल्प नहीं है तो ऐसा नहीं हो कि हमें उसे समझाने कुछ लोग बोलेंगे हम समझाते हैं ना ऐसे लोगों को इसलिए तो उनसे बात करते हैं। अरे बाबा पहले खुद तो समझ जाओ तुम देखो अपने गरेबान में जाकर कितनी झप्पासाई कर रहे हो कितना शास्त्र अध्ययन हो रहा है कितनी भक्ति हो रही खुद तो तुम अपने आप को सुधार नहीं सकते तो दूसरों को क्या सुधारोगे। तो श्रील भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इससे बेहतर है विवेक अतिरिक्त देश सेवत्व अरतिर जन संसिदम। इससे बेहतर है आम लोगों से दूरी रहो और भक्तों का संग करो ताकि तुम्हारी अपनी भक्ति इंक्रीज हो। मनुष्य को चाहिए कि वह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांत वास करने में कहां तक सक्षम है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे आपको ये देखना चाहिए, प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए कि क्या आप आम लोगों से जो कि अवांछित संगति है, अवांछित का मतलब ये हुआ जो भगवान की भक्त नहीं है, केसी में नहीं है, ऐसे लोगों की संगति के बिना आप कहाँ तक आपको अच्छा लगता है, रह सकते हो ऐसे लोगों के बगैर जो आपके अपने हो लेकिन वो केसी में नहीं है, तो आप उनके उनसे दूर रखो। तो उसमें क्या करना चाहिए, अपना परीक्षण करना चाहिए, अपने आप को प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए कि क्या खाली भक्तों की संगत नहीं है आप आनंद ले रहे हो, या आपको अभी तक इतना ज्ञान हासिल करने के बावजूद अभी तक ऐसे लोगों की संगति या ऐसे लोगों के साथ बैठना या ऐसी हरकतें करना अच्छा लगता है। आगे श्री पापा जी बोल रहे हैं, यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं रहती, मतलब दिल ही नहीं करता ना उसका जाने का। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को रोक रहा है, पता है क्या, भक्त कभी अपने आप को रोक नहीं रहा था, उसका उसको इतना अच्छा लगता है कृष्ण भावना भावित उत्सव में जाना, वहां पर जाके कुछ। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, क्या होता है कि भक्त जो है ना वो उसकी इंटेंशन चेंज हो जाती है, उसकी रुचि चेंज हो जाती है, उसको अच्छा ही वहां पर लगता है जहां पर भक्ति होती है, उसको मजा ही वहां पर आता है। लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं वो क्या सोचते हैं, अब आप कंपैरिजन करते हैं ठीक है कि हम किधर तक पहुंचे। जो अभक्त होते हैं ना लेकिन भक्ति कर रहे होते हैं, मतलब जो अभी तक सीरियस नहीं होते हैं लेकिन उनको पता है कि भाई भक्ति करनी है, वो क्या करते हैं, उनको मजा आ रहा होता है किसमें, भौतिक चीजों में, घूमना फिरना, खाना पीना, सिनेमा जाना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, उसमें मजा आ रहा होता है। लेकिन और फिर हमें क्या बोलते हैं, हम तो सबको एक साथ लेकर घूमते हैं, क्या भक्ति भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग इस तरह बोलते हैं। लेकिन भक्त क्या है, भक्त अपने आप को एंजॉयमेंट से नहीं रोक रहा है, लेकिन उसका एंजॉयमेंट उसी में है जिसको भक्ति बोलते हैं। क्या कि देखो उसको है ना अच्छा ही भक्ति करना लगता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि भक्त को मजा ही भक्ति में आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी देखो जो दूसरे लोगों में, अभी मैं थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर लूं, टीवी देख लूं, सिनेमा जा लूं और ये खा लूं वो खा लूं, उसके बाद में भक्ति करूंगा, यानी कि मजा तो मुझे भौतिक चीजों में आ रहा है, मुझे इंद्रिय तृप्ति में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्योंकि भक्ति करना जरूरी है इसलिए बाद में भक्ति करूंगा, है ना, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वास्तविक जो भक्त होता है उसको मजा ही नहीं आता भौतिक चीजों में, सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक लोगों, ऐसे लोग जो कैसी में नहीं है, ऐसे लोगों से मिलना, गप्पे लड़ाना, टाइम पास करना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति, उसमें उसको अच्छा ही नहीं लग रहा होता, उसको ऐसा लग रहा होता है अगर बाय चांस कभी उसको मजबूरन फैमिली के साथ जाना पड़ता है तो उसको बार बार ऐसा रियलाइज हो रहा है, क्यों मैं अपना समय वेस्ट कर रही हूँ, इससे बेहतर नहीं था कि घर पे बैठ के मैं जप कर रही होती। तो ये यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह स्वाभाविक है, उसकी नेचर ही ऐसी हो जाती है, वह स्वाभाविक है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की रुचि ही नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि वो भक्ति कर रहा होता है और उसको मजा नहीं आ रहा होता है, वो बस खाली भक्ति कर रहा होता है, सोच रहा होता है बाद में मुझे मजा आएगा, काम में दूसरा करूंगा, अपने एंजॉयमेंट के लिए और कुछ करना है, लेकिन भक्ति तो मुझे बस ऐसे जरूरी करनी है इसलिए कर रहा हूँ, जब इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन उसको मजा ही उसमें आता, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है, क्योंकि भक्त का एक एक क्षण उसको पता चलता है कि मेरा कितना कीमती है, एक क्षण भी अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर अपने जीवन की पूरी कमाई देने पर भी वो वाला क्षण वापस नहीं आएगा, तो समय वही सफल होता है जो कृष्ण भक्ति में गुजरता है। तो भक्त क्या सोचता है कि मेरा एक एक क्षण, इसे भागवतम में बताया गया, साहानि चन महत् छिद्रम सा मोहो सच विभ्रम, यानी कि वो भक्त समझता है कि वह मेरे जीवन का सबसे बड़ी हानि है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जब मैं कृष्ण को भूल जाता हूँ, सामोह सच विभ्रम, जब मैं कृष्ण को याद नहीं कर सकता हूँ, मेरा सबसे बड़ा भ्रम ये है, मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, कि जब मैं भगवान को याद न कर रहा हूँ, भगवान की संगति नहीं कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूँ। यन मुहूर्तम क्षणो यापी वासुदेवम न चिंतय। यन मुहूर्तम यानी कि एक मुहूर्त, एक छोटी सी पलक जब हम झपकाते हैं ना, इतनी देर तक भी अगर मैं भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूँ, भगवान को समय नहीं दे रहा हूँ, किसी और चीज में समय दे रहा हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्यवान वो वाला समय है। इसे कुछ लोग बोलते हैं आज का दिन मेरा बेकार है, जाया जा रहा है, तो जाया टाइम वही जा रहा है जो भगवान की भक्ति में नहीं जा रहा। तो भक्त जानता है कि वह जो काम हम करेंगे भक्तों की भक्ति के अतिरिक्त, दूसरे लोग से मिलेंगे या अलग बातें इस तरह की करेंगे, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसे शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यहाँ पर श्री रूपा जी हमें ये बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो स्टडी करते हैं, किसके दार्शनिक होते हैं, फलसफी होते हैं, स्टडी करते हैं कि काम वासना पूर्ण जीवन खराब है, उसकी बुराइयां, भले कुछ भी बता रहे हो, मतलब उनके बारे में बता रहे हैं ना, भक्ति के बारे में तो नहीं बता रहे, भले वो दूसरे जीवन के विषय में बता रहे हैं, अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि भाई ये है ये, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। कि भले आप ये भी सोच रहे हो, दूसरों को बता रहे हो कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, वो चीज नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, वो बताओ ही नहीं ना, आप ये प्रमोट करो कि आपको क्या करना है। और जब भक्ति में जब बंदा आएगा तो वो सारी चीजें खुद ब खुद उसकी रुचि नहीं लगेगी। और आगे बताया यह एक से एक प्रकार से व्यर्थ होता है, यानी कि ये सब फिजूल है, ये सब नहीं करो नहीं करो नहीं करो, और आखिर में बताओ कि भक्ति करो, पहले ही बता दो भक्ति करो और सब करेगा ही नहीं। तो श्रीमद भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करके, अगर आप इतना अच्छा सोच सकते हो, आप इतनी अच्छी नॉलेज हासिल कर सकते हो, तो आप किसे क्या हासिल करने के लिए करो, विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में, कि अपनी आत्मा के बारे में बोलो ना। अब संसार में तुम्हारे जिस्म के साथ क्या हो रहा है, शरीर की सारी गतिविधियां, ये दिन से जीवन या फिर अदर दूसरी चीजें जो आपके सिर्फ शरीर तक ही सीमित है, उनके बारे में स्टडी करके अपने दिमाग को खर्च करने का क्या फायदा। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है, यानी फिजूल टॉपिक्स है जो शरीर पर डिपेंड करते हैं, आत्मा का जो टॉपिक है वही ज्यादा अनिवार्य है, तो उसी में समय व्यस्त करना चाहिए। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा 12वें श्लोक की पहली लाइन, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्। आध्यात्म ज्ञान, इसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जहां तक आध्यात्म ज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यावहारिक है। कि आध्यात्म ज्ञान में क्या करना है, भक्ति करनी है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे, पहले देखे कि आत्मा और परमात्मा क्या है, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मा तथा परमात्मा कभी भी एक नहीं हो सकते, जैसे कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, श्री प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आत्मा का एक व्यस्त एक इंडिविजुअल अस्तित्व है और वो कभी परमात्मा नहीं हो सकती, विशेषतः भक्ति योग में तो कभी नहीं। यानी कि कुछ ऐसे योग हैं जैसे जिसमें सायुज्य मुक्ति होती है ना, जो ब्रह्म निराकार की निराकार को मानते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि आगे जाके आत्मा जो है वो निराकार की ज्योति में सम्मिलित हो जाएगी, एक हो जाएगी। लेकिन श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर एक लाइन बहुत अच्छी बता रहे, विशेषतया भक्ति योग में तो आत्मा और परमात्मा कभी भी एक नहीं हो सकते। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, वास्तव में आत्मा परमात्मा का नित्य सेवक है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत है, क्योंकि नित्य सेवक है तो नित्य भक्ति करेगा, तो शाश्वत है अर्थात कंटिन्यूअस ये भक्ति चलती है, कभी जीवन का या जीवन के अंत के बाद कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब हमारी भक्ति नहीं होगी, जब हम भगवान के दासत्व में नहीं होंगे। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये बात को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप भगवान के नित्य दास हो और आपको हर कंडीशन में, चाहे आप मुक्त हो चाहे आप बद्ध अवस्था में हो, आपको भगवान की सेवा करनी है। और आगे जो बात है, भगवान श्री कृष्ण ने 12वें श्लोक की सेकेंड लव जो सेकेंड उसमें बताया पंक्ति में, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आध्यात्म ज्ञान समझ में आ गया ना कि हम भगवान के दास हैं, अब लेकिन तत्व ज्ञान समझना है, वो है रियल ज्ञान। और उसमें श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे सेकंड लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 427 और उर्दू में बताया जा रहा है पेज नंबर 476 का सेंटर वाला पैराग्राफ है, जिसमें श्रीमद् भागवतम 1.2.11 में व्याख्या की गई है। किसके बारे में? तत्व ज्ञान के बारे में। अब तत्व ज्ञान को समझना है, इसके बारे में क्या बताया भागवतम में? वदन्ति तत् तत्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम्, कि जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है, यानी कि अब देखो तत्व ज्ञान कैसे सीखेंगे, जिन्होंने सीखा है उससे, और जो वास्तविक ज्ञाता है, जिन्होंने सीखा है, वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार, वह जानते हैं कि जो तत्व ज्ञान है वो तीन रूपों में किया जा सकता है। क्या? वदन्ति तत् तत्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द्यते 1.2.11 श्रीमद् भागवतम्। इसमें क्या बताया गया? ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, इन तीन अलग अलग स्टेप्स में हम तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा है, इसको हमने बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझा है। श्री प्रभुपाद ने अलग अलग तरीके से हमें बताया, जैसे छोटी सी मिसाल मैं आपको यहाँ पर भी बता सकती हूँ। उसमें क्या है कि जब आप गाड़ी में जा रहे हो और दूर दूर से एक पर्वत नजर आ रहा है, वो पर्वत क्या है आपको नजर, मतलब ऐसे पता चलता है, एक ब्लू कलर का एक धुंध सा नजर आता है और आप समझते हो कि यही पर्वत है। फिर आगे जाते हैं, फिर पता चलता है कि अरे वो तो ब्लू कलर का दूर से नजर आ रहा था, लेकिन वास्तव में तो क्या ये पर्वत है और ये मिट्टी से बना हुआ है और ऐसा इतना बड़ा है इसके। लेकिन अगर रियल में आप उसको टच करके देखते हो, आप उसको उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हो कि भाई ये इसकी ऊंचाई इतनी है, लंबाई इतनी है, इसके अंदर नदियां हैं, इसके अंदर पत्थर हैं, इसके अंदर वृक्ष हैं, वो सारा का सारा आपको, मतलब जितना जितना आप करीब जाते हो उतना उतना आपको उसकी वास्तविकता पता चलती है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें ये बताते हैं कि परम सत्य साक्षात्कार में भगवान की पराकाष्ठा है। रियलिटी में क्या आपको ये समझना है, पहले पहले क्या समझते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, अस्तित्व है बट हम समझ नहीं पाते वो निराकार है। लेकिन फिर बाद में आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, वो उसका एक आकार है जो हमारे सबके हृदय में है, और आगे जाने के बाद पता चलता है कि वो परमात्मा जो निराकार है, वो जो परमात्मा है कण कण में व्याप्त है, वो वास्तव में दिखता कैसा है, कितना सुंदर है, उसके अंदर क्या क्या गुण है, वो कैसे खड़ा होता है, कैसे बोलता है, प्रेम कैसे करता है, देखता कैसे है, स्माइल कैसे करता है, और उसके कपड़े कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, और उसका हॉबीज क्या क्या है। तो जो जानते हैं, तत्वदर्शी हैं, वही बताएंगे ना। तो ब्रह्मा जी क्या बताते हैं? वेणुं कर्णन्तम् अरविन्द दलायताक्षम् भर्हवतम् समासितम् बुध सुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशुभा गोविन्दम् आदिपुरुषम् तमहं भजामि। के वो बांसुरी पकड़ते हैं, उनका जो शरीर है वो नीले बादल की तरह है, उनकी आंखें कमल के कमल के फ्लावर की तरह है, उनके होंठ बिंबा फल की तरह इतने रसीले हैं, और वो मंद मंद मुस्काते हैं, और जब खड़े होकर हमारी तरफ देखते हैं तो करोड़ों कामदेव जो हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि साक्षात्कार, परम सत्य के साक्षात्कार भगवान की पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए, यही ज्ञान की पूर्णतया है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अब यहाँ तक ज्ञान जो है वो पूर्ण हो गया, रियलिटी समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ और मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये ज्ञान है। और आगे भगवान बताते हैं श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, विनम्रता से लेकर आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं, शुरू से लेकर जो अभी हम पढ़ चुके हैं उस तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुँचने की के लिए एक सीढ़ी के समान है। यानी कि निम्रता से जब हमने शुरू किया और आत्म संयम, घर बार में आसक्ति छोड़ना और सुख दुख को समान समझना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की रियलिटी को समझना, ये सब समझने के बाद जब हम लोग अंतिम जो हमारा गोल है क्या, आत्म साक्षात्कार, अपने आत्मा को समझना और भगवान को समझना, ये सीढ़ी है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक पहली सीढ़ी पर हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब कुछ लोग बोलेंगे ना, हम लोग तो मुझसे क्वेश्चन अक्सर करोगे आप लोग कि भाई इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग नहीं हो रहा है, या अहंकार का त्याग नहीं हो रहा है, या फिर अभी तक हम समान नहीं समझ पा रहे हैं इन दोनों को। हम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा है ही नहीं। भगवान ने बताया है, श्रील प्रभुपाद ने इसको स्वीकार किया है, समस्त लोगों ने स्वीकार किया है, जितने आत्मदर्शी तत्वदर्शी हैं उन्होंने स्वीकार किया। तो ये रियलिटी ज्ञान है, कोई मैंने अपनी तरफ से थोड़ी ना बताया आपको, ये रियलिटी ही ज्ञान है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखो सही बात यहाँ तक है कि हम किस जगह पर है, हम हमारी स्टेज क्या है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर है, कुछ दूसरी सीढ़ी पर है, तो कुछ तीसरी सीढ़ी पर, किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यानी कि भले आपके अंदर बाकी सारी क्वालिटीज आ जाए, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति तक नहीं पहुंचते हो, कृष्ण को सरेंडर नहीं करते हो, तब तक तो निम्नतर अवस्था में हो, यानी कि बिल्कुल नीचे वाली जगह पर। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यानी कि ये तो आप बाकी सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाए, लेकिन जब तक आप भगवान का दासित्व स्वीकार नहीं करते हो, कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को स्वीकार नहीं करते हो, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास वो नहीं समझते हो, तो आप क्या करते हो कि भगवान आत्मा सु परमात्मा। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। बाकी सारी क्वालिटीज भले तुम 50 ये कि 25 लिखी हुई है, आप अगर करोड़ों क्वालिटीज भी आपके अंदर आ जाए, आप कितने बड़े ज्ञानी क्यों न हो जाओ, कितने बुद्धिमान हो जाओ, सारी गुण आपके अंदर आ जाए, लेकिन अगर भगवान के भक्त नहीं हो तो आपका सारा प्रयास विफल है, बेफायदे है। यह स्पष्ट कहा गया है कि निम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अब क्योंकि पहले पहले भगवान ने निम्रता बताया, और निम्रता, विनम्रता का क्या मतलब होता है, मैं दास हूँ, दास भाव नहीं है तो निम्रता कहाँ से आएगी। तो अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है, कि ये क्या है, ये तो अहंकार है, ये तो अपने आप को स्वामी समझना, ये तो गर्व है, ये तो अहंकार है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। यानी कि हर समय देखा जाता है जीव को दुखी भोगना पड़ रहा है, प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको ठुकराया जाता है, उसको तकलीफें दी जाती हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब कंटिन्यूअस दुखों में जी रहा है, और बोलता है क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ, आत्मा सु परमात्मा, मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ यानी कि स्टार्ट ज्ञान का कब होता है, अमानित्वम, अमानित्वम अधम्भित्वम, है ना, ऐसे शुरू किया ना भगवान ने, और इसी यहीं से स्टार्ट किया, अमानित्वम या विनम्रता, कि तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुन, अमानी न मान देना कीर्तनीह सदाहरि। इसीलिए कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, अरे हाँ आज उनका बर्थडे भी है ना, तो उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि इस श्लोक को कंठी बनाकर अपने जो गले में डाल देना चाहिए, और तावीज बनाकर सदैव इसको याद रखना चाहिए। जब तक विनम्रता होगी ना, तब बाकी सारी चीजें खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाएंगी। तो मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। यानी कि अगर शुरू से ही विनम्र होते ना, तो आज फंसे हुए नहीं होते। हमने भगवान के साथ विद्रोह किया, भगवान के प्रभुत्व को, वहां पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की और स्वामित्व दिखाया, तो क्या हुआ, हमें प्रकृति के अधीन होना पड़ा। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना है और इससे विश्वस्त होना चाहिए और इस सच्चाई को समझकर हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि जब हम नम्र हो जाएंगे, जब हम भगवान के सरेंडर हो जाएंगे, जब भगवान की शरण में आ जाएंगे और भगवान के हर फैसले पर हम बखुशी विलिंगली हम उसको स्वीकार करेंगे, तभी हम इस मादी जो चंगुल है ना, ये इससे बच सकते हैं। इंसान को इस सच को जानना चाहिए और इस पर यकीन होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।